الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه إلى آخره. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیو اور پردہ نشین محترمہ، میری مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی، جس کو کہتے ہیں قصے اصحاب غار ہے، اصحاب غار والوں کا قصہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کے چھوٹے بیٹے ہوتے تھے، اور اسلام میں جب پہلی لڑائی ہوئی تھی بدر، اس وقت تو ان کی عمر 13 سال کی تھی، اور احد کی لڑائی میں ان کی عمر 14 سال کی تھی۔ انہوں نے تمنا کی تھی کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی کم ہونے کی وجہ سے، 15 سے کم تھی، اس لیے منع فرمایا۔ پھر 5 ہجری میں جب غزوہ خندق ہوا، اس وقت یہ شریک ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیکی کی گواہی دی ہے، بہت نیک تھے۔ یہ دیکھتے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنا خواب بیان کرتے رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کی تعبیر صحابہ کرام کو بتلاتے تھے۔ ان کی بھی تمنا تھی کہ مجھے بھی کوئی خواب آ جائے، حضرت عبداللہ کی بھی تمنا تھی کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے، اس لیے کہ سارے صحابہ خواب دیکھتے ہیں، میں کیوں نہیں دیکھتا، تو میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعبیر تو پوچھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد خوابات سنتے تھے سب کے، اور تعبیر بیان کرتے تھے، اور نکاح نہیں ہوا تھا اور مسجد میں سوتے تھے، ایک رات خواب دیکھا مسجد میں۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک ریشم کا ٹکڑا ہے، ریشم کا کپڑا جس کو یہ پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ ریشم کا ٹکڑا ان کو لے کر کے جنت میں اڑ رہا ہے۔ یہ خواب دیکھا، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی اس جنت میں، کبھی اس جنت میں، کبھی اوپر جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی، خواب تو اچھا ہے، تو ابھی بیان کیسے کریں، اس لیے کہ چھوٹی عمر کے تھے، شرم کرتے تھے، سب خواب پوچھ رہے ہیں، مجھے بھی خواب دیکھنا ہے، دیکھ تو لیا، اب پوچھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کے بعد کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ اب کیسے پوچھے؟ تو اپنی بہن کے گھر چلے گئے، ان کی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ان کی بہن ہوتی تھی، حضرت عمر کی بیٹی ہے، وہاں گئے اور ان کو اپنا خواب بیان کیا کہ بہن میں نے یہ خواب دیکھا ہے، سو آپ میرا یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرو، وایا کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اخاک رجل صالح، तेरा भाई अब्दुल्ला बहुत नेक आदमी है, ये ताबीर होगी। अब ये तो बुखारी शरीफ में ये ख्वाब नकल किया है सही हदीस में। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दुआ भी बहुत तासीर रखी थी। अब्दुल्ला इब्ने उमर जब भी दुआ करते थे ना उनकी दुआ कबूल हो जाती, बहुत नेक आदमी थे। अल्लाह के नबी सब को नेक कहा, जब अल्लाह के नबी किसी को नेक कहें तो देखने का क्या। हम लोग तो ख्वाब में उड़ते हैं आसमानों में जमीन में पारों में, और ये तो उड़ते थे जन्नत में। ख्वाब भी अच्छे अच्छे ख्वाब भी अजीब अजीब आते हैं। एक तो शैतानी ख्वाब होता है, इसलिए सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो शैतान भागता है। अगर पढ़े बगैर सो जाते हैं तो माशाल्लाह उनकी जगह तो हमारा नाक ही है, नाक के अंदर आके बैठ जाता है। पूरी रात हमसे मीटिंग करता रहता है, पूरी रात हमसे क्या करता है, मीटिंग करता है, यानी बैठ के वसवसे डालता रहता है। फिर वो यहां उड़ गया, कभी वहां उड़ गया, कभी यहां मर गया, कभी वहां मर गया, कभी किसी ने मारा, कभी किसी ने भगाया, कैसे कैसे ख्वाब। दूसरा इसको अदगासुल अहलाम कहते हैं, हदीस में बुखारी में नकल किया। दूसरा एक ख्वाब है, वो पूरा दिन जितना बकवास करते हैं वही रात में ख्वाब में भी आ जाता है, जितना सोचते हैं बोलते रहते हैं, कभी मैं ये सामान यहां रखता हूं, यहां रखता हूं, यहां रखता हूं, वो भी ख्वाब में आ जाता है। हमारे इकबाल भाई, तो ये सब होता है दिन में, जो कुछ काम होता है वो रात में ख्वाब में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा वही चीज होती है। इसको कहते हैं दिन की बातें रात में रिपीट हो जाती है। और तीसरा जो है उसको रुया सालिहा कहते हैं, अच्छा ख्वाब है। ये नबूवत की 46 हिस्सों में से है। जिसको अच्छा ख्वाब आए तो अच्छा ख्वाब किसको बतलाना चाहिए, नेक लोगों को बतलाना चाहिए, मेरे तेरे जैसे को नहीं बतलाना है, वरना अगर उसने उल्टी ताबीर कर दी ना तो उल्टा ही हो जाएगा, जैसी ताबीर करेगा वैसा हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर उसकी ताबीर बयान करना चाहिए और पूछना चाहिए। हर एक को हर वक्त ख्वाब बयान नहीं किया जाता। So, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इराक का गवर्नर बनाया। उन्होंने कुछ दिनों के बाद खत लिखा कि मैंने पूरे इराक को अपने हाथ में कर लिया है, ऐसे मेरे हाथ में है पूरा इराक, आई कंट्रोल, लेकिन यानी मेरे लेफ्ट हैंड में मैंने पूरा इराक ले लिया और दाहिना हाथ मेरा खाली है, आई कंट्रोल होल कंट्री। तो मुझे हिजाज का यानी अरब का, यमामा का, बहरेन का भी मुझे गवर्नर बना दो, तो मेरे हाथ में दोनों आ जाए, दो लड्डू। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर को यह पसंद नहीं था कि हज्जाज ज़ियाद को, हज्जाज ये हिजाज जो है यानी क्या बोलते हैं, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, सऊदी जो है पूरा, ये ज़ियाद के कंट्रोल में आ जाए। इसलिए अल्लाह से दुआ की, اللهم انك تجعل في القتل كفارا لمن شئت من خلقك। ए अल्लाह, इब्ने सुमैया, इब्ने सुमैया से मुराद ज़ियाद है, उसको बिस्तर की मौत दे दे। कैसी मौत दे दे? बिस्तर की मौत, इसलिए कि बड़ा जालिम था यार, अगर इसके हाथ में चला जाएगा तो कहीं खून हो जाएंगे सहाबे किराम के, ताबेईन के। इसको किसी के हाथ कत्ल न कर, उसको क्या बिस्तर पर आराम से मौत दे दे, इसको किसी के हाथ कत्ल न कर। क्यों? इसलिए शहीद होगा ना तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। शहीद होने की वजह से क्या होता है, बड़ी दुआ है, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, इसलिए कि इसने मखलूक पर बहुत जुल्म किया, कभी इसको कभी उसको कभी यहां कभी वहां सबको कत्ल कर दिया है। इसलिए फरमाया कि इनको क्या करो, इन्होंने बड़ा जुल्म किया इसको। तो इस हदीस में इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला दुआ की, ए अल्लाह इसको बिस्तर की मौत दे, शहादत की नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर की दुआ कबूल होगी और उसके अंगूठे में, ऐसे अंगूठे में या पैर के अंगूठे में एक बीमारी लगी, एक फोड़ा लग गया और एक हफ्ते में ये मर गए। तारीख दमिश्क में इस वाकये को नकल किया है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला की दुआ भी कबूल हो जाती थी, जो कहते थे अल्लाह कबूल करते थे। तीसरी बात यह कि सुन्नत के बहुत पाबंद है, सुन्नत सुन्नत सुन्नत। इसीलिए अगर किसी को नबी अकरम अगर किसी को अल्लाह के करीब होना हो, अगर किसी को अल्लाह का महबूब बनना हो, तो ऐसी शक्ल में क्या करे, सुन्नत की पाबंदी करे, छोटी छोटी मोटी सब सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दे। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी फरमाते हैं, तुम अल्लाह का वली बनना चाहते हो तो सुन्नत को सुन्नत के इस्तेहजार के साथ करें। एक लफ्ज में कह दिया, यानी सुन्नत कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे दिमाग में इस्तेहजार भी हो कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, इसलिए कर रहा हूं। इस्तेहजार का मतलब, जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई आदमी खाने से पहले हाथ धोएं और नियत करें कि अल्लाह तेरे नबी की ये सुन्नत है हाथ धोना, मैं हाथ धो के खाना खाता हूं, और खाने के बाद भी हाथ धोएं, हाथ धोते हुए अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद हाथ धोए हैं, अल्लाह के हबीब की सुन्नत है, ए अल्लाह इसको कबूल कर। अगर आदमी ये दो, हर सुन्नत के बारे में लेकिन खास करके दो सुन्नत है, तो उसके जिम्मे अगर कोई कर्जा है तो अल्लाह उसके कर्ज को भी अदा करवा देते हैं। एक एक सुन्नत की ये बरकत है। इसलिए सुन्नत तुम करते हैं, देखो मस्जिद में दाखिल हो गया मैं, है ना, दाहिने पैर से दाखिल हो गया, दुआ भी पढ़ ली सब कुछ, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैंने जूता पहन लिया, चलो मैंने दाहिने पैर में जूता तो पहन लिया, इसका भी हमें पता नहीं होता है कि पहनते वक्त दाहिना पैर रखे और निकालते वक्त लेफ्ट पैर से निकाल, तो उसको तिल्ली की बीमारी, किडनी की बीमारी नहीं होती है। ये क्या कह रहे हैं, इस्लाम और जदीद साइंस में लिखा, नई साइंस के आज के टेक्नोलॉजी में इन लोगों ने रिसर्च करके क्या उन्होंने फाइंड आउट किया। जैसे कहते हैं ना कि साइंस वाले कहते हैं, आज कह रहे हैं कि अगर तुम लंबा सजदा करो तो फिर ब्रेन हेमरेज नहीं होता। क्यों? इसलिए कि खून क्या होता है, ऊपर जाता है, तमाम सजदा करते हैं, पोजीशन ऐसी है। ये तो सजदा तो अल्लाह ने कुरान में तो कहा है कि इसने गोया मेरा करीब हो गया, ये तो कुरान में है, सूरह इकरा इसमें की आखिरी आयत है कि वो जो सजदा करता है वो मेरे करीब हो गया। इन्नल अब्दा युनाजी इन्नल अब्द यस्जुदु बैन बैन कदमै रहमान, हदीस में, ये हदीस में रिजन में है, बंदा अल्लाह के दो पैर के दरमियान सजदा करता है। ये तो है, लेकिन आज की साइंस कहती है जो लंबा सजदा करें, थोड़ा जरा सा लंबा सजदा करें, अपनी नफल में, अपनी सुन्नत में, अपनी तहज्जुद में, अपनी इशराक में, अपनी जास्त में, सो उसके दिमाग की रगे खुलेगी, उसकी मेमोरी बढ़ेगी, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा और उसका दिल हार्ट का अटैक नहीं होगा, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि लंबे सजदे की वजह से खून कहां जा रहा है, अब ये हार्ट में और हार्ट से कहां जा रहा है, दिमाग में, चूंकि पोजिशन ऐसी है। बाकायदा उन्होंने फोटो ऐसे सजदे का रखा है का इस्लाम में ये सजदा जो है ये बहुत कीमती है। हर हर सुन्नत में फायदे बहुत है। इस तरह कदम को आपने दाहिने पैर से शूज पहना और निकाल के उसका लेफ्ट किया। देखिए हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हम टॉयलेट में जाते हैं तो चप्पल चलो पहन लिया आपने अंदर जाकर, लेकिन पहले लेफ्ट फुट से जाए, या फिर अंदर चप्पल आपको पहनना है तो बाहर निकाल ले उसको, बाहर निकाल कर पहले दाहिने पैर में पहने, फिर बाएं पैर में पहनकर फिर लेफ्ट रखें, गलत ना हो। तो एक एक है, सुन्नत में बहुत बरकत है। ये तो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब बयान फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी हर सुन्नत को इस्तेहजार के साथ करे, इस्तेहजार का माना जो सुन्नत अदा कर रहे हैं, वेन एवर यू प्रैक्टिसिंग एनी सुन्नत, एट दैट टाइम यू थिंक दैट दिस इज अ सुन्नत ऑफ माय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर इसके करते करते अल्लाह आपको वली बना देंगे, कुतुब बना देंगे, अब्दाल लोगों में से बना देंगे। क्यों? हवा में अगर कोई उड़े तो अल्लाह के इतना करीब नहीं होता, लेकिन अगर कोई सुन्नत पर अमल करे तो अल्लाह के करीब हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है, इत्तेबाए सुन्नत का जिक्र किया कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मौला तुम्हारे साथ राजी हो जाए तो फिर क्या करो, फत्तबिउनी, मेरी इत्तेबा करो, मेरा फॉलो करो। इत्तेबा का क्या माना है? उनके नक्श कदम पर, उनकी सुन्नत पर अमल करना है, उस पर गुनाह भी माफ हो जाते हैं और एक एक सुन्नत पर 100-100 शहीद का सवाब मिलता है। देखो आज के जमाने में सुन्नत पर अमल करने वाले बहुत कम लोग हैं, इसको फितने का जमाना कहते हैं। यंगस्टर्स को तो सुन्नत का पता ही नहीं है, आज के यंगस्टर्स को और यंग गर्ल्स को तो सुन्नत का पता ही नहीं है कि सुन्नत क्या है और सुन्नत का क्या माना है और कौन कौन सी सुन्नत है। देखिए आप ना, खाने से पहले हाथ धोते हैं और खाने के बाद भी टिश्यू हाथ भी नहीं धोते, उन्हें पता ही नहीं है वुजू की क्या क्या सुन्नत है, नमाज की क्या क्या सुन्नत है और सारी सुन्नतें, बाल कुम करने की क्या सुन्नत है और क्या क्या बहुत सारी सुन्नत, सोने की। देखो रात देर तक टीवी पर बैठे रहते हैं, फोन में बैठे रहते हैं, सो जाते, उन्हें पता ही नहीं है कि अगर इस हालत में मौत आ गई ना, बगैर कलमे के मर जाता है, कलमे के बगैर जाता है। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, तुम्हारा आखिरी कलमा हो जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। इसीलिए बुखारी शरीफ में है, अगर कोई आदमी आखिरी दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु नफ्सी इलैक ववज्जहतु वजही इलैक वलजहतु ज़हरी इलैक वफव्वज़तु अम्री इलैक रग़बतन वरहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनक इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिक अल्लज़ी अंजल अभी नबी कल्लजी अरसलत। सहाबी ने सिर्फ यूं कहा इस दुआ को अंदर में, अभी नबी का की जगह अभी रसूल कल, इतना बदल दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, मैंने जो कलमा कहा वही पढ़ो। हालांकि नबी और रसूल को फर्क, सुभान अल्लाह, नबी आप है रसूल आप है, सिर्फ बदल दिया, वह भी नबी कर लदी वह भी रसूल कर लदी। फरमा नहीं, अंदाजा करो लफ्ज में भी कितनी बरकतें हैं, जो लफ्ज चूंकि मेरे नबी अपनी जबान से जो बयान करते हैं वो अल्लाह से लेकर बयान करते हैं और अल्लाह के पास हर सुन्नत। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये आखिरी दुआ है रात की, बुखारी की शरह में लिखा है, इस बुखारी की दुआ है, बुखारी की शरह में लिखा है, अगर कोई आदमी इस दुआ को पढ़कर मर गया तो उसकी मौत ईमान पर आती है, ईमान पर। और इस दुआ के बाद आपने फिर दोबारा बात की तो इस दुआ को फिर रिपीट करो। इस दुआ को क्या है, इसलिए कि तुम्हारी आखिरी दुआ यह होनी चाहिए। यह बात तोहफतुल कारी शेर बुखारी में लिखी है, इसी दुआ के तहत में लिखा। मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत हमारे लिए बड़ी कीमती है। जिंदगी में सुन्नत को अदा करो, सुन्नत को, चलते फिरते उठते बैठते आप अल्लाह के करीब हो जाओगे, फिर देखो अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी कयामत में कितने खुश हो जाए एक एक सुन्नत। बहुत जरूरी है, بہت ضروری ہے. اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ ذہن میرے سوال میں رہتا ہے ہر وقت کہ سارے نبیوں کا ذکر اللہ پاک نے بہت مرتبہ کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, میرے نبی کا ذکر اتنا نہیں کیا ہے قرآن میں جبکہ وہ امام الانبیاء ہے, سارے نبیوں کے سردار ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو غالباً ہر پارے میں ہے سوائے دو پارے کے, ہر پارے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امام الانبیاء کا ذکر اتنا کیوں نہیں جبکہ قیامت تک یہ قرآن باقی رہنے والا ہے اور یہی نبی باقی رہنے والے ہیں, ان کے علاوہ اور کوئی نبی آنے والا نہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی شریعت نہیں. وہ شریعت لے کر آئے وہی شریعت, وہ احکام لے کر آئے وہی احکام, وہ سنت لے کر آئے وہی وہی آخری نبی ہے. پریشان ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر پہنچا تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ایک ہی آیت سب پر بھاری ہے. قرآن کی ایک آیت کیا ہے, سب پر بھاری ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ امت کو پیغام دے رہے ہیں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا محبوب بن جائے میرے نبی کی زندگی پکڑ لو. یوں نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پکڑو, عیسیٰ علیہ السلام کی, سلیمان علیہ السلام کی, یحییٰ علیہ السلام کی, ہر بندے کو خطاب ہے میرے نبی کی, ان کو راضی کرو گے تو میں راضی, وہ ناراض تو میں ناراض. یہی ایک آیت نے مجھے پھر بتلایا, تسلی دے دی کہ یہی ایک آیت ساری ہے, ساری باتوں پر کافی. سنت سنت سنت
اللہ.
تو ایک تو بات یہ میں نے کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو کہا رجل صالح ہے, اچھے خواب پر, کیا کہا, بہت نیک آدمی ہے. دوسری بات اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا تھا کہ ہر وقت ان کی دعا قبول ہوتی ہے, اور مستجاب الدعوات بننے کا ایک نسخہ حدیث میں اور لکھا ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے بڑے گنج مراد آبادی وغیرہ نے لکھا ہے بات کہ اگر کوئی آدمی اللہم اغفر امتا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے تو وہ اللہ کا وہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور بڑھاتے ہیں, فرمایا اس دعا کے ساتھ دعوت کا کام بھی کریں تو اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. دعوت کا کام کا یہ مطلب نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں کہ بس جماعتی نکالو, میرے گھر میں میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے, اس کو سمجھانا بھی دعوت ہے. اکیلے فرعون کو سمجھانے کے لیے دو دو نبیوں کو بھیجا, اکیلے فرعون کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور تو کیا کر رہا ہے, یہ بھی دعوت. میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, اس بیٹے کو سمجھانا, اس کے سامنے واقعات بیان کرنا, آخرت کی باتوں کا ذکر کرنا, یہ بھی دعوت ہے. اپنا شوہر صحیح راستے پر نہیں, اس کو سمجھانا, یہ بھی دعوت ہے. دعوت بہت ساری ہے. میری فرینڈ ہے, اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہ صحیح نہیں کر رہی, اس کو اسی وقت ٹوک کر کے نبی کی بات بتلانا کہ یہ صحیح نہیں, صحیح یہ ہے, یہ غلط ہے, یہ بھی دعوت ہے. دعوت کے بہت سارے طریقے. یہ تو اللہ ایک نظام بنایا تھا جو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مردوں میں, لیکن عورتیں یہ سمجھتی ہم گھر میں کیا کریں, گھر میں بھی دعوت ہے, اپنے پڑوسیوں میں بھی دعوت ہے, محلے کی عورتوں میں بھی دعوت ہے. دعوت ہر وقت ہے, مرتے دم تک دعوت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت کی اتباع کرتے ہوئے دیکھ لیں तो कहें ये तो मजनून और पागल है, ऐसी सुन्नत की पाबंदी। कोई भी देखे अब्दुल्लाह इब्न उमर को सुन्नत की इत्तबा करते हुए ऐसा समझते थे साम वाले कि ये पागल है, देखने वाले कि ये पागल है। गोया ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में नकल किया है। गोया सुन्नतों के एहतमाम की देख एहतमाम करने की वजह से देखने वाला उनको पागल समझता था, पागल है। जब भी सफर में जाते कोशिश करते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनोवरा से मक्का जाते हुए कहां बैठे थे, कहां नमाज पढ़ी थी, यहां तक के कहां रब हाजत किया, हर जगह जहां जहां सफर किए जाते थे और वहां बैठ जाते थे, वहां बैठ जाते थे, और जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब हाजत को जरूरत चीज की पूरा करने के लिए बैठे, वहां ये जरूरत पूरी नहीं करते थे मेरे नबी ने यहां जरूरत पूरी की मैं क्यों पूरी करूं, लेकिन वहां ऐसे बैठ जाते थे, बैठ जाते थे कि मेरे नबी यहां ऐसे बैठे थे, ऐसे सुन्नत के पाबंद थे। जैसी नमाज अल्लाह के रसूल वैसी नमाज, यहां तक कि उन्होंने वो दरख्त भी तलाश किया था जिन दरख्तों के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी बैठे हैं, पाबंदी से उस दरख्त को पानी भी पिलाते थे, यही वही दरख्त है जहां मेरे नबी बैठे थे, ताकि वो सूख न जाए पानी भी पिलाते थे सूख न जाए, ताकि हमेशा वहां मैं नमाज पढ़ता रहूं, मेरे नबी ने यहां पढ़ी है बरकत मैं भी यहां पढ़ू। ये सारी बात है सीरत की किताब में एलामुन नुबला में लिखी हुई है। एलामुन नुबला सीरत की बड़ी अच्छी किताब है, उसकी चौथी जिल्द में ये सारी बातें लिखी हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हज हज में तशरीफ ले गए तो जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब फरमाने के लिए बैठते थे वहां खुद बैठ जाते, हालांकि पेशाब का तकाजा नहीं है, लेकिन मेरे नबी यहां बैठे हैं मैं भी बैठूंगा। अजीब उनकी ये तो उनकी सुन्नत की हालत थी। ये बातें मैं इसलिए अभी तो मैंने शुरू नहीं की हदीस, अभी तो इस हदीस को बयान करने वाले रावी का जिक्र कर रहा हूं मैं। गार का वाकिया अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया, मैं बता रहा हूं अब्दुल्लाह बिन उमर कौन है, हमने सहाबा और सहाबियात की जिंदगी नहीं पढ़ी है, मेरी माए और बहने सहाबियात की जिंदगी पढ़ा करो, आज तो किताबें उस पर लिखी हुई है। हाँ हजरत आयशा कौन थी, हजरत हफ्सा कौन थी, उनकी जिंदगी कैसी थी, उम्मे हबीबा कौन थी, उम्मे सलमा कौन थी, हजरत फातिमा कौन थी, जैनब कौन थी, रुकैया कौन थी, हजरत उमर की बीवी की कैसी जिंदगी थी, अबू बकर सिद्दीक अदमा की बीवी की जिंदगी, ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सखी भी थे, बेमिसाल बहुत मशहूर थे उनकी सखावत। एक मरतबा बीमार थे, बीमारी की हालत में बीमार को कुछ खाने का शौक होता है, भजिए बना दो, समोसे बना दो, जरा गरम गरम चाय पिला दो, बीमारी की हालत में शौक होता है बीमार को, भाई ये पिला दो चलो, वैसे अच्छा नहीं लगता हो चुके कड़वा लगता है बुखार की वजह से, लेकिन चाट होती है कोई चीज की कहीं मछली खाने की, तो खादिम को एक दिरहम दिया जाओ अंगूर ले आओ, अंगूर अंगूर का माना ग्रेप्स, लिया। अभी अंगूर की मौसम तो थी नहीं, अंगूर की सीजन नहीं थी, अभी देखो मैंगो तलाश करें मिल जाए, यहां तो मिल जाती है लेकिन मैंगो सीजन में, मैंगो सीजन न हो रहा मैंगो तलाश करें कहां से मिलेंगे, अब बेमौसम वो अंगूर के साथ दाने लेकर आ गया, कहीं से मिल गई लेकर आ गया, अब एक भीख मांगने वाला बाहर आ गया उसी वक्त, अभी ये खादिम अंगूर लेकर घर में दाखिल हुआ सात अंगूर के दाने सात, इतना भी नसीब हो जाता था हमको, हम तो बंच और बंच लेकर आ जाते, सात दाने मिले लेकर आए, चलो बीमार है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर खा लेंगे। जैसे ही आया घर में वो खादिम, बाहर किसी साहिल ने आवाज दी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جاؤ ان کو انگور دے دو، ایک دانہ بھی نہیں چکھا، حالانکہ بیماری کی حالت میں اور میسو موسم بھی نہیں مل گیا. ہمارے طرح چلو بھائی کچھ اور دے دو، یہی چیز دے دی. کیوں؟ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں دیا کرو، اپنی پیاری چیز. وہ کل پرسوں سے کسی نے جبہ مانگا، میں نے کہا چاہیے تو لے لو بھائی، دن اتنی نہیں. ہمارے اکابرین ایسا ہی، وہ بس ہاتھ میں ہوتا جو کچھ کسی نے دیا فوراً دے دی. یہ ہے جو مال بھی آپ کو پسند آ جاتا تھا صدقہ کر دیتے تھے، صدقہ کر اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں نہ دے. اس آیت کریمہ پر عمل کرتے عبداللہ ابن عمر نے اپنی وہ پیاری چیز جو منگوائی تھی انگور وہ بھی دے دی. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر بیٹھ گئے، اونٹنی سے اترے بیٹھ گئے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ چرواہا، چرواہا کا معنی شیپر، بکریا چرانے والا، وہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے اتر رہا ہے اور حضرت تشریف لے جا رہا ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ تو چرواہا ہے؟ آئی شیپر؟ اس نے کہا ہاں میں شیپر ہوں، چرواہا ہوں. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بھائی یہ تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے، ایک بکری بیچ دے. کیا کہا؟ ایک بکری مجھے بیچ دے. اس نے کہا میں تو بھائی بکریوں کا مالک نہیں، میں تو کام والا ہوں، نوکر ہوں، بکریاں چلاتا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اپنے مالک کو بتا دینا عقل و ادب، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کیا بتایا، وہ کپڑے ان کا نکال کر لے آئے اور تھوڑا جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بھی ڈال دیا اور کیا کہا، بھیڑیا کھا گیا. تو آپ بھی بتا دینا اپنے مالک کو کہ ایک بکری کم کیوں ہے، تو کہنا بھیڑیا کھا گیا، آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے اور مجھے گوشت مل جائے گا اور کام کا کام بن جائے گا، مالک کو بتا دینا. تو اس چرواہے نے کہا جو جواب دیا ہے، فائد اللہ، چرواہا تو کیا کہہ رہے، مالک میرا یہاں نہیں ہے تو اللہ کدھر گیا، اللہ کدھر گیا، میرا اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، مالک نہیں دیکھ رہا، مالک نہیں دیکھ. ہاں یہ اگر استحضار میرے دل میں آ جائے نا تو گناہوں سے بچنا آسان ہے. یہ بات دل میں پیدا کر، جیسے وہ مدینہ منورہ میں لڑکی کے چھوٹی جوان لڑکی ہے، ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں کیا کر دے، پانی ملا دے اور پھر بیچ دے. تو بیٹی نے کہا حضرت عمر کو پتا چلے گا تو دنڈے ماریں گے. حضرت عمر تو امیر المومنین تھے اس وقت اور وہ دروازے کے پاس سن رہے ہیں، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے نا، آواز باہر جاتی، سن رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، رات میں چکر لگاتے تھے، گشت کرتے تھے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ دروازے پر سن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے امی کو نہیں حضرت عمر کو پتا چلے گا. او ماں نے کہا حضرت عمر کہاں دیکھنے آنے والے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، حضرت عمر کہاں آئیں گے؟ تو فرمایا عمر تو نہیں، اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. جوان بیٹی نے ماں کو کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے رات کے اندھیرے میں، امیر المومنین تو نہیں ہے لیکن اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے اس مکان کو برابر دیکھ لیا کون سا مکان ہے، پھر صبح میسج بھیجا وہ لڑکی کون ہے، کہا اس کی شادی میرے لڑکے کے ساتھ کر دی جائے، اپنے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دی اور اسی سے پیدا ہوئی اب عمر ابن عبدالعزیز، پانچویں خلیفہ. کیسے تھے عمر ابن عبدالعزیز، ان کی زندگی پروگرام. ہاں اس لیے اپنی اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری. बुखारी शरीफ का वाकिया है, एक औरत आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोटी छोटी दो बच्चियां लेकर, भूखे थे बेचारे। हजरत आयशा के पास है, कहा कुछ खाना हो तो दो। मां के पास, हजरत आयशा ने फरमाया मेरे पास तो कुछ नहीं है, ठहरो मैं देखती हूं घर में जाना, कुछ भी नहीं, और मेरे घर पर कोई आया तो फ्रीज में तो 10 किस्म के खाने मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हम तो वो लोग हैं, नहीं खाना नहीं पीवाना, पहले से कह देते हमारे गुजराती लोग चाय नहीं पिए, नहीं पिए बीच में ले आते, नहीं यानी नहीं पिए, समझते हो अब्दुल भाई? देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही दो आदमी आए, उनको नहीं पता है जिब्राइल मीकाएल है, जवान खूबसूरत बनकर आए और मेहमान आए, बैठो सलाम कलाम किया, अभी बैठो मैं आ रहा हूं, बाहर गए बछड़े को जबा किया, भूंज हमारी तरह नहीं कि उसको काटे और उसको ये करे और तेल डाल दे, नहीं, भूंज कर लाकर सामने रख दिया, खाओ। नहीं हम नहीं खाते, खाओ हम नहीं खाते, कुरान में ये वाक्य लिखा है, क्यों नहीं खाते? कहा हम तो फरिश्ते हैं, जिब्राइल और मीकाईल है, और फरिश्ते खाना नहीं खाते। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला, इसमें क्या नसीहत मिली, नहीं खाएंगे, पूछा ऐसा खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं पूछा, सीधे गए जाकर भी नहीं आए, बाद में पता चला गए तो फरिश्ते सखावत थी। अल्लाह ने ऐसे लोगों से बनाया, मेरे नबी की सखावत रमजान में ऐसी होती थी, पूरा साल होती थी, लेकिन रमजान में ऐसे जैसे कि एक फ्लड आ गया, फ्लड पानी कैसे जा रहा है, हदीस में इसकी मिसाल दी है माए जारी की तरह, जैसे फास पानी जा रहा, ऐसी सखावत करती थी रमजान, बहुत ज्यादा गिनकर नहीं, और जकात में भी गिनते हैं, 10 बार गिनेंगे, कहीं ज्यादा ना चले जाए 10 पाऊं। ये दोनों बच्ची लेकर आई बुखारी शरीफ मेहमान, खाना नहीं, हजरत आयशा ने फरमाया देखती हूं घर में कुछ आया नहीं, कुछ भी नहीं मिला, एक खजूर मिली, क्या मिली, एक खजूर लाई, का खा लो, उस मां थी, उसने उसके दो टुकड़े किए, दोनों बच्ची को दिया, खुद भूखी रही, तो चली गई, चली गई। हजरत आयशा को बड़ा ताज्जुब हुआ, मां कैसी है, अपने बच्चों की कैसी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुद भूखी रही लेकिन बच्चों को खिलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाकया सुना तो फरमाया अगर इस तरह तरबियत करें, बड़ा करें दो बच्चियों को, तो कयामत के दिन ये बच्चियां उनकी शादी कर दें दुनिया में, तो कयामत के दिन ये दोनों बच्चियां अपने मां बाप के लिए जहन्नम में जाने से रोकने के लिए बीच में आर बन जाएगी, आर पर्दा, नहीं जा सकते मेरे मां बाप। यही चीज है, अगर हमारे दिल में बैठ जाए कि मेरा अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो देख रहा है, तो चाहे खलबत हो जलबत हो, रात हो दिन हो, हर वक्त, फिर इंसान के लिए तौबा करना भी आसान, मैंने अल्लाह को नाराज कर दिया, अल्लाह के लिए नेकी करना भी आसान, नमाज पढ़ना भी आसान, वक्त पर नमाज, माए और बहने बहुत सारी काम काज में ऐसी मजबूर हो जाती है कि नमाजों को भी कजा कर देती है। हाँ अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अनु के गुलाम भी समझते थे कि हमारे आका अब्दुल्लाह इब्न उमर बड़े सखी है और बहुत नेक है, तो वो अच्छा से अच्छा काम करते थे, क्या अच्छा, लंबा सजदा करते थे, नहीं बात, और बहुत तस्बीह लेके बैठ जाते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और कुरान पढ़ते थे, गुलाम लोग किसको बतला रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनको पता था कि हमारे अब्दुल्लाह इब्न उमर मास्टर जो है, जब किसी को अच्छा नेक काम करते हुए देखते थे तो आजाद कर देते हैं, हर गुलाम को फ्री होना है, आजाद होना है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उनको आजाद कर देते थे। तो कुछ लोगों ने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते कहा भी कि तुम्हारे ये गुलाम तो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं जी, वो तो रसूलुल्लाह नहीं, वो गुलामुल्लाह कर रहे हैं, ये तो इबादत के जरिए तुम्हें धोखा दे रहे हैं, इबादत के जरिए धोखा दे रहे हैं, खाली लंबा सत्ता कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, ताकि तुम देखे तो उसको क्या कर दे, आजाद कर दे, धोखा दे रहे हैं। तो लोगों की इस बात पर अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, अजीब जुमला है जिसको तारीखुल इस्लाम इमाम ज़हबी ने लिखा है। इमाम ज़हबी बहुत बड़े तारीख लिखने वाले थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे और मुअर्रिख भी थे, तारीख उन्होंने लिखा है, मन खदअना बिल्लाही अन खदअना लहु, कह रहे हैं जो शख्स भी हमें अल्लाह के नाम पर धोखा दे उससे धोखा खाना हमें पसंद है। अल्लाह के नाम पर भी धोखा दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पसंद है, हम उसको आजाद कर देंगे। अल्लाह के नाम पर भी धोखा दे, ये आदमी अगर अल्लाह के नाम पर अल्लाह की इबादत के जरिए हमें धोखा दे तो हम धोखा खा जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आजाद कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत, उनके दिलों में मोहब्बत, उनकी उनकी इबादत और इताअत इतनी ज्यादा बैठी हुई थी, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी माएं और बहनें, माल की कुर्बानी, इसी तरह मुराकबा, अल्लाह कौन है मुझे देख रहा, ये सारी बातें, सुन्नत पर अमल करना, जो आज का मेरा मौजू था, आज का मेरा मौजू क्या था, अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी। इंशाल्लाह फिर आगे बयान करूंगा कि फिर इस हदीस में क्या वाकिया बयान किया है इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इस सबक में इंशाल्लाह उसको हम बयान करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी बयान करने के बाद इंशाल्लाह करीबन करीबन हम तो कई सालों से ही रियादुस सालिहीन का दर्स दे रहे हैं, अच्छा खासा सबक हो चुका है, बहुत सारी यानी किताब पूरी होने के करीब करीब है। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, जो बातें कही जाती है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी कुरान की तफसीर भी पूरी कर दे, अभी तो 18वां पारा है 18 साल में, तो दुआ करो जल्दी जल्दी पूरा हो जाए ताकि ये भी छप जाए, मंजर आम पर आ जाए, लोग उसको देख कर भी पढ़े इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर ले, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालिक व लिअज़ीम सुल्तानिक, اللهم لك الحمد كما انت اهل وسل على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك انت اهل التقوى واهل المغفره يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله اے اللہ سنتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ سنتوں والی زندگی نصیب فرما، تیرے راستے میں قربانیاں دینے کی والی قربانیاں دینے والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ تیرا ہر وقت ہمیں استحضار رہے، اے اللہ ایسا مراقبہ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، اپنا بنا لے، گناہوں سے بچا لے، اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں نفس و شیطان اور دشمن کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمیں نفس و شیطان اور دشمن کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ جیسے ایک ماں اپنا بچہ، چھوٹا بچہ جب پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے، کپڑے گندے کر دیتا ہے، تو ماں اس کو پھینکتی نہیں ہے، ماں اس کے کپڑے نکال کر اس کو غسل دیتی ہے اور پھر اس کو نئے کپڑے پہناتی ہے اور اس کو پاؤڈر اور خوشبو لگاتی ہے، پھر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اے اللہ زندگی ہم نے بھی پیشاب پاخانوں سے زیادہ بدبودار گناہوں میں گزار دی ہے، بہت گناہ کیے ہیں، جو پیشاب اور پاخانہ کی بدبو تو ختم ہو جاتی ہے، ہمارے گناہ تو بہت خطرناک ہے، کہیں زیادہ گندے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دھو دے، ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ توبہ سے اس کو دھو دے، توبہ سے، توبہ کے پانی سے اس کو دھو دے۔ اے اللہ، اے اللہ हमें तेरी रहमत के कपड़े पहना दे, तेरी रहमत के कपड़े पहना दे, तेरी मगफिरत के कपड़े पहनाकर ऐ अल्लाह हमें अपने करीब कर ले, अपने सीने से लगा ले, ऐ अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले, ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे, बड़े गुनहगार हैं, बड़े मुजरिम हैं, बड़े पापी है, ऐ अल्लाह तू माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह इस महीने में बरकतें नसीब फरमा, रहमतें नसीब फरमा, आफियतें नसीब फरमा, आने वाला महीना रमज़ान का में नसीब फरमा, या अल्लाह आने वाला महीने के अंदर इबादत करना आसान फरमा, रोज़ा रखना आसान फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान आलों की परेशानियों को दूर फरमा, ना हमारी आलो औलाद की मगफिरत फरमा, हमारी आलो औलाद की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे करीब और दूर के रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा, हमारे भाई बहन की मगफिरत फरमा, भाई बहनों की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह उनकी औलादों की मगफिरत फरमा, या अल्लाह हमारे दोस्त अहबाब की मगफिरत फरमा, हमसे मोहब्बत रखने वालों की मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं लाउल आलमीन सबकी मगफिरत फरमा, खुसूसन हमारी माएँ और बहनें और हमारे ये भाई जो मस्जिद में आए हैं, मदरसे में आई है, अल्लाह सब की मगफिरत फरमा, दूर अपना काम छोड़ छाड़ कर तेरे नबी की बातों को सुनने के लिए आई है, सबका आना कबूल फरमा, सबका बैठना कबूल फरमा, सबके लिए मगफिरत के फैसले फरमा, आफियत और रहमत के फैसले फरमा, ऐ अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा, जिस किस्म की बीमारी में, दुख दर्द में जो भी परेशान हो, शुगर में, डायबिटीज में या ब्लड प्रेशर में, ऐ अल्लाह सबको हर किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, सबको हर किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, या अल्लाह हमारी बेटियों को, हमारी बेटों को हमारी आंखों की ठंडक बना, और हमारी नस्लों में ऐ अल्लाह नेक सालिहीन, उलमा सुलहा, औलिया कामिलीन पैदा फरमा, ऐ अल्लाह मोमिनीन मोमिनात पैदा फरमा, सालिहीन सालिहात पैदा फरमा, ऐ अल्लाह मुत्तकीन पैदा फरमा, इलाहुल आलमीन फिसलने से, बिगड़ने से, कुफर से, शिर्क से, जिल्लत से, बिदात से हमारी, हमारी औलादों की और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, ता कयामत हमारी औलादों को ऐ अल्लाह तो ईमान पर कायम दायम रखना, हम सबको जब तक बाकी रखे ईमान पर बाकी रखना, जब हमारी मौत आए अल्लाह हमें ईमान पर मौत देना, अल्लाह अपने फजल से, करम से, रहम से, ऐ अल्लाह इन आमीन कहने वाले और कहने वालियों की आमीन के साथ हमारी आमीन को मिलाकर हमारी दुआ और तौबा को कबूल फरमा, वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद वालिही वसहबिही।